ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग प्रतिदिन भागवत पढ़ते हैं और भागवत के रचनाकार श्री व्यासदेव जी का प्रणाम करते हैं, उसके बाद भागवत शुरुआत करते हैं। तो आज इस कलिजुग के विशेष करके गोरलीला के जो वेदव्यास है, चैतन्य भागवत के जो रचयिता है, उस चैतन्य भागवत चैतन्य और कृष्ण तो अभिन्न है, जो उनके लीला श्रीमद भागवत है और ये उनका लीला वही भागवत है, चैतन्य भागवत है। तो उनको रचना करते हैं वही व्यासदेव है, तो उनको भी जैसे वंदना करते हैं। जब व्यासदेव जी जो श्रीमद भागवत के रचना किए हैं, हम जब उनका प्राकट्य के बारे में देखते हैं कि श्री पराशर मुनि हठात सत्यवती जो कुमारी अवस्था में थी, तो उनसे तुरंत ही व्यासदेव को पकड़ करा के नौका के बीच में, नदी में पार करते हुए नौका के बीच में उनको उनसे प्रकट करा के ले गए। और व्यास देवी के चरित्र में पराशरात मजंग बंदे सुकतातंग तपोनिधि, उनके पिताजी के महिमा है। माता का नाम तो होता ही नहीं, क्योंकि माता तो गायब हो गए, वो कुमारी रह गए, वो किसी बताएंगे नहीं कि ऐसा हाल है करके। तो उनके पिता का महिमा बनाए, पराशर पुत्र है, सुखदेव के पिताजी हैं, ऐसे करके। तो माता जी सोचे ये क्या बात है, भाई मैं तो माँ हूँ और केवल आपके महिमा, इतने बड़े ऋषि बने, श्रीमद भागवत के रचयिता बने और आपके साथ आपके पिता के महिमा बनते, हमको तो कोई पूछे ही नहीं। तो व्यासदेव ने बोले ठीक है। तो इस चैतन्य भागवत में उनके पिताजी के नाम को नहीं रखे, उनके माँ के नाम से प्रसिद्ध करा दिए, है ना, नहीं नारायणी सुत करके प्रसिद्ध है। जैसे मैं कहता हूं, आप सब जानते हैं कि भगवान को रिझाना, हम जानते हैं भक्ति के, भगवान भक्ति के द्वारा ही तुष्ट होते हैं, लेकिन वो भक्ति कैसा होना चाहिए, हम अपने चेष्टा बल पराक्रम साधना के ऊपर गर्व करके साधन करके भगवान को पालें, ये नहीं हो सकता। उपनिषद में इसे कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, इसे सुन करके प्रवचन देने वाला सुनने वाला इनके द्वारा भी आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न मेधसा न बहुना श्रुतेन, कोई आपके बुद्धि मेधा शक्ति के द्वारा नहीं कि अनेक अनेक ग्रंथ वेद पुराण पारायण पर भी नहीं। यम एव ऐसा वृणुते, ओ जिनको चुनते हैं तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम, उनके लिए तो गुरु बन करके सब कुछ बन करके उनको बना देते हैं। वो जिन सिलेट के बाद उनको मुझे अपना पार्षद बनाना है तो बनाएंगे। अब रही बात कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं, नहीं। जिस पवित्र आत्मा ने जुट कर कृत निश्चय करके भगवान को पाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के प्रयासरत हो गया, यत्न में लग गया, जब उनका साधन पूरा होता है, उनका हृदय पवित्र हो जाता है, तो भगवान तो ढूंढते फिरते रहते हैं कहां मेरे लिए जगह बैठने के लिए बैठ जाऊं, लेकिन गंदे जगह में नहीं बैठते हैं, वो तो विशुद्ध सत्व है। जहां शुद्धिकरण आ गया, आत्मा पवित्र हो गया, तो भगवान आ जाता है। तो भगवान उनको चुन लेते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। यहां हम देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, अब हम जानते हैं कोई विशेष संतान उत्पन्न करने के लिए हमारा वैदिक प्रणाली है कि गर्भधान संस्कार करवाते हैं। अब भगवान स्वयं करवाते हैं गर्भधान से, वही नारायणी शिवास पंडित का नाम सुने होंगे, जो गौर पार्षद है भगवान गौरांग महाप्रभु के, जो नित्य पार्षद में जो चार भाई थे, चार भाई तो हम नाम सुने हैं, शिवास, श्रीपति, श्रीराम और श्रीनिधि, लेकिन वो पांच भाई थे। वो जड़धर पंडित के पांच पुत्र थे, जो उनके बड़े पुत्र था उनका नाम था नलिनी पंडित, ये सबसे बड़े भाई थे, शिवास के ऊपर भी वो थे नलिनी पंडित, और वो पांचों को पांच कृष्ण भक्त थे ही, लेकिन नलिनी सभी शादी के गृहस्थ थे। नलिनी पंडित के एक लड़की था, एक लड़की हुआ था छोटा, उस बाल्यावस्था से उनका देहांत हो गया दोनों का, माता पिता दोनों चल बैठे। तब वे छोटे बालिका को रंखण बखण का दायित्व पूरा को पूरा श्रीवास पंडित बड़े भाई थे उनके ऊपर आया और रखे। और यद्यपि आप जानते हैं शिवास जी का एक लड़का था, वो भी चल बैठा किशोर अवस्था में, तो केवल यही रही थी। तो शिवास जी के भांजी भातृपुत्री, उनका नाम था नारायणी, जो पितृ मातृहीना थी। अब चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में आपने निमाई पंडित की लीला करते थे, बड़े पंडित थे, यहां तक कि कश्मीरी पंडित को भी जीत लिए थे, और पूरे नवदीप में क्यों पूरे भारतवर्ष में उनका प्रतिभा व्याप्त हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने जब गया से जा करके पितृ श्राद्ध करने के बाद अभी भक्त का अभिनय करने लगे, अब कृष्ण कृष्ण बोल करके अहर निशी रोते रहते थे। और तभी जो जमाना था नवदीप में, लगभग 90% से ज्यादा लोग नास्तिक थे, निरीश्वरवादी थे, सब पाप अत्याचार अन्याय इसी में लिप्त थे, देवी पूजा करना ये करना, कोई विष्णु पूजा वैष्णव कृष्ण कोई मानते नहीं थे। इस दशा में ये चारों भाई नवदीप में घर में रह करके मांग करके कुछ खाते थे, कोई काम दाम नहीं, अपने सपरिवार कीर्तन में लगे थे, हरि कीर्तन करते थे अपने घर में। तो गांव वाले लोग तो सारे नास्तिक थे, वो बोले ये क्या कर रहा है ये ब्राह्मण, भीख मंगा के रात को रात भर भी सोने नहीं देता, कीर्तन करते हरि, भगवान कम से कम सोते हैं, चार महीना बोलते ना हरि शयन एकादशी शयन कर जाते भगवान सोते हैं, ये उनको सोने भी नहीं देता, डिस्टर्ब करता है। अरे भगवान को भजन करना है, मन में चुपचाप करने से नहीं होगा क्या, भगवान के बहरा है सुन नहीं पाएंगे, ये आवाज करके हाथ उठाकर चिल्लाता है नाश्ता, ये क्या करता है, कवाड़ बंद करके भगवान को मौन रह करके स्तुति करने से क्या भगवान सुन नहीं पाएंगे, ये भगवान को डिस्टर्ब करता है। भगवान अगर क्षीर सागर में शयन किए हैं, अगर जग जाएंगे उनका निद्रा में व्याघात होगा तो मालिक है बड़े लोग, और उनका नींद डिस्टर्ब खराब हो जाएगा तो गुस्से में फिर सबका ऊपर बदला लेंगे, सब गांव उजड़ जाएगा, भगवान रुष्ट होंगे तो छोड़ेंगे किसको। तो इसे विचार कर रहे थे, कोई बोले अरे उनको पकड़ करके उनका घर द्वार तोड़ दो, कोई बोलते उठा के गंगा में फेंक दो, ये करो वो करो, नाना प्रकार के उनके विरोधी षड्यंत्र, यहां तक कि काजी से बुलवा करके और उनका मुलक अधिपति जो राजा था उनके पास में कंप्लेन पहुंचा दिए, सारे ग्राम वाले साइन करके होते ना वो इकट्ठा होकर मैंने ग्रुप बना करके और उनका विरुद्ध में दाखिल कर दिया राजा के पास, और यहां तक बोले कि अभी राजा नौका भेजेगा, सारे फोर्स आएंगे उनको पूरा पकड़ के ले जाएगा, वो करेगा ये करेगा। गांव वाले बोले देखो हमको भी पिटाई करेगा कि हमारा गांव में ऐसा करते हैं, मुसलमान राजा है ये भगवान का कीर्तन इधर हो रहा है, हम उनके वजह से दंडित होंगे, तो बहुत गुस्सा हो रहे थे उनके ऊपर। तो सारे गांव में उनके विरोध में चर्चा चल रहा था, कोई गाली दे रहे थे, नाना प्रकार से उनको धिक्कार कर रहे थे। और शिवास पंडित जब बाहर निकलते तो सारे लोग इस प्रकार चर्चा, वो बेचारे बड़े चिंतित हो गए, भयभीत हो गए, बोले क्या मैं कीर्तन कर रहा हूं, वो भी इतनी बड़ी विपत्ति, एक तो सारे देश निरीश्वर ईश्वर विहीन है और मैं मेरा घर में बैठकर चुपचाप कीर्तन करता हूँ, दिन में नहीं रात में करता हूँ, सब सो जाते हैं तब भी उनको इतने अड़चन है, इतने सारे परेशान करते हैं मुझे, मारपीट जी सब करने का, इतने आलोचना षड्यंत्र कर रहे हैं। बड़े दुखी और भयभीत होकर के शिवास पंडित अपने घर में जो ठाकुरवाड़ी था, जो मंदिर बनाए थे घर में, वहां बैठ करके नृसिंह देव को स्थापना करके पूजा करते थे। कुल हे नृसिंह देव, आप भक्त के भक्ति को रक्षा करते हैं, विघ्न नाश करते हैं, तो मेरा ये अर्जन क्या करूं, मैंने मेरा क्या दोष है, आप कुछ कीजिए, बचाइए। तो बड़े ध्यान से नृसिंह देव को उपासना कर रहे हैं शिवास पंडित और चारों भाई, उनका जो बाकी तीन भाई वो भी बैठे हैं, सब चिंतित हैं। तो गौरांग महाप्रभु अपने घर से निकल करके गंगा किनारे टहलते टहलते घूमते फिरते चल रहे थे, दृष्टि पड़ा थोड़े देर में कुछ गाय, कुछ ग्वाला गाय चरा रहे थे। तो गायों की ओर देखे और गंगा जी के तट तो था ही, तो याद आया जमुना तीर वन वनचारी, याद आया। तो तुरंत वो एक्चुअली ध्यान तो उनका था शिवस, क्यों शिवास आराधना कर रहा ना, किसको आराधना कर रहा है, साक्षात ईश्वर तो ही टहल रहे हैं, जिसको पूजा कर रहा है विग्रह के सामने, विग्रह तो वही तो है, उन्हीं का विग्रह है, वो तो नहीं जानते, लेकिन वो तो जानते ना सारे उपासना, उनके जो अर्थ प्रार्थना ये तो उनके पास पहुंच रहा है। वो गंगा किनारे टहलने में उनका मन कहां लगता है, टहलते टहलते जैसे गायों की ओर देखा, ये देखा आवेश आ गया कृष्ण का, मैं वही हूं, मैं वही हूं कहकर चित्कार करके दौड़े, आवेश होकर के खूब जोर से दौड़े, दौड़ करके सीधा चले गए गंगा के किनारे से शिवास के घर। शिवास कबाट बंद करके, अंदर से कबाट बंद करके चुपचाप उपासना करते नहीं, सुनो जा करके जोर से लाठी मारे कबाट में, अंदर से बंद था दरवाजा, जोर से दो चार किक मारे, पदाघात के लाठी मारे उसको, शिवास शिवास करके चिल्लाने लगे, घोर गर्जना करके चिल्लाने लगे, किसको पूजा कर रहा है तूने, किसको ध्यान कर रहा है, देख नहीं रहा है तेरा दरवाजे के ऊपर ही खड़ा है, हा? मूर्ख पूजा कर रहा है उसको, मैं इधर खड़ा हूं फिर पूजा कर रहा है विग्रह को। शिवास बोला कौन इसका कितना भयंकर गर्जन, कौन गुस्सा में, कोई अटक किया ना, कि तो बचने के लिए तो कर रहा था, पुलिस पुलिस आते नहीं गए। धीरे से कबाड़ के फांक से देखा, अरे ये तो हमारे निमाई है, लेकिन ये प्रचंड रुद्र मूर्ति उनका, पूरा ज्वलंत अंगार जैसे पूरा लाल लाल और पीले वर्ण था, बिल्कुल क्रोध में लाल पीले पड़ चुके हैं, इतने घूसे में रुद्र मूर्ति लेकर के गर्जना कर रहे हैं, लात मार रहे हैं दरवाजे को। शिवास तो डर गए, पूरा कांप थर 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 कांपने लगे, दरवाजा खोल करके धड़ाम से उनके चरण में गिर गए, बोले बचाओ, क्यों इसलिए गुस्सा है, क्या है, बचाओ आप जानते हैं शिवास के बिल्कुल छोटे बच्चे के समान होंगे, शिवास बहुत बड़े हैं उम्र में, ये तो बालक है, बिल्कुल यंग लड़के थे, लेकिन आज ये भीषण मूर्ति देखकर शिवास बिल्कुल थर 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 कांपने लगे, बिल्कुल उनके चरण पकड़ करके ओ गाली देने लगे, तू किसकी पूजा कर रहा है, मैं वही हूं, और बोले बोल करके धड़ास में घर के अंदर घुस गए और नृसिंह भगवान को उठा करके स्वयं बैठ गए, खट अल्टर में बैठ गए, हाँ स्वयं बैठ गए। शिवास बोलते हैं अरे ये बच्चा को क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, अल्टर में जाकर खुद बैठ गया, भगवत विग्रह उठा करके साइड करके खुद बैठ गया, और बैठे नहीं गर्जना करके बोले पूजा कर मुझे, कर स्तुति मेरा। अब शिवास बोला अब क्या करूं, मैं पूजा कर रहा था बीच में हुआ कर बैठ गया, बोलते मेरा पूजा करो, अंत पूजा तो करना ही था, वो इतने भीषण मूर्ति देख वो भी डर गया, अब पैर पकड़ करके दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगा, भागवत से दशम स्कंद से श्लोक गा करके और जितने स्तुति प्रार्थना प्रणाम उनकी याद था सारे करने लगा, और सारे घर वाले जिन उनके थे पूरे सपरिवार सब दास दासी समेत सब आकर के दंडवत प्रणाम करके सब भय के मारे सब पूजा करने लगे। अब गौरांग महाप्रभु आपने चरण उठा करके सबके सर में चरण धर रहे थे, सब आप कोई निर्भय हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं, मैं हूं फिर क्या डर है। बोले अच्छा, बहुत स्तुति करने के बाद सबके सर के ऊपर चरण धरे, आप सर निर्भय कर उठे देखने, बोले यही से क्या, हम तो जानते तू निर्भय लड़का है, गांव गांव घूमते फिरते रहता है, तू ऐसे हमारे चरण धर दिया सर के निर्भय हो जाएंगे, सारे गांव वाले मेड़ी इकट्ठा होकर के हमारे विरुद्ध में राजा के पास कंप्लेन दरखास्त दे दिए हैं, ये सब चल रहा षड्यंत्र धर दिया। तो महाप्रभु तो अंतर्जामी है, समझ करके बोले, क्या श्रीवास, क्या सोच रहा है कि ये राजा आएगा आकर तुझे दंडित करेगा, नौका से पुलिस आएंगे तुझे अरेस्ट करने के लिए? अरे तू नहीं समझता है, मैं तो पूरे संसार को चला रहा हूं, सबके अंदर तो मैं ही हूं। अगर राजा के अंदर मैं नहीं बुलावाऊंगा, नहीं बुलवाऊंगा कि पुलिस को भेजो नौका में जाओ, तो कैसे बोलेगा वो? आप सभी जानते हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन ओ हरि, अगर हमारा अंदर विद्यमान ना होते तो हमारा जीवा होकर भी हम बोल नहीं सकते। वो आप लोग का अंदर भी विद्यमान ना होते तो आपका दो दो कान होते हुए भी आप सुन नहीं सकते। ये बुलाते भी वही और सुनवाते भी वही। तो बोले, अगर मैं नहीं उनको बुलवाऊंगा उनके अंदर, तो पुलिस कैसे भेज देगा, ऐसे कैसे भेजवा देगा? तो विश्वास नहीं कर रहे। अरे फिर भी तू अगर मान रहे हो कि नहीं मेरे स्वतंत्र होकर कुछ कर देगा, तो ऐसे कर देगा, मैं छोड़ दूंगा उसको, तो मैंने सबसे पहले चला जाऊंगा राजा के पास नौका में, आप नहीं जाएगा, मैं नौका में बैठकर पुलिस के साथ जाऊंगा और जाकर के राजा को चैलेंज करूंगा, चैलेंज करूंगा, ए राजा इधर आओ, बुलाओ तेरे जितने मुल्ला काजी जितने सारे हाथी घोड़ा मृग पशु पक्षी सबको बुलाओ, बुलाओ सबको, और मुल्ला काजी जितने हैं सबको बुलाओ, जाकर चलेगा कि आपके काजी लोग जो जो आपके मौलवी पंडित सब है उनको बोलो, इस पशु पक्षी हाथी घोड़ा को आपके शास्त्र पढ़ करके रुला दें, रुला सकते हैं? आपका विश्वास कर सकता? श्रीवास तो देख रहा है कि सुन रहे, बस सारे परिवार सुन रहे, बोले कभी नहीं कर सकता हो, उनके मुल्ले मौलवी काजी और जितने सारे पंडित है मुसलमान के वो तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं चैलेंज करूंगा, राजा भी ऐसे देख जाएगा, तब मैं दिखाऊंगा अपन पराक्रम। सारे को सारे केवल हरिनाम कीर्तन करके वो काजी मुल्ले दाढ़ी वाले चोटी वाले सबको हाथी घोड़े पशु पक्षी मृग समेत सब नचाऊंगा, रुला दूंगा, ऐसे रुलाऊंगा कि वो देख करके आश्चर्य हो जाएंगे, सब कीर्तन करा दूंगा, कीर्तन ऐसे कराऊंगे सुर होएंगे। वो सब सपरिवार सुन रहे हैं, वो तो प्रवचन कर रहे हैं। शिवा सोच रहे हैं, तू छोटा सा लड़का बालक है, तू क्या इसे उदंड कर रहा है, तेरे मूर्ति देखकर हम डर लग रहा है, लेकिन क्या बाचाल उसे बक रहा है। तो भगवान समझे कि श्रीवास तो सुन रहा है, तो भक्ति तो है लेकिन परत नहीं जा रहा है, कि कैसे कैसे मान लूंगा मैंने कि आप ऐसे करेंगे। बोले अच्छा श्रीवास, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अब दिखाऊं तुझे प्रत्यक्ष दिखाऊं। वो चुप देख रहे हैं, तो उनका परिवार में जो उनके भांजी था 4 साल की छोटा सा लड़की थी, वो भी खड़ी थी इधर, वो बेचारा 4 साल की अज्ञान बालिका वो क्या जानती है। तो बोले बेटी इधर आओ, नारायण इधर आओ, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोल के क्रंदन करो। बस सभी के सामने जैसे महाप्रभु ने इसे आज्ञा की, तुरंत ऊर्ध्वभाव होकर के चित्कार करके कृष्ण कृष्ण बोल करके नारायणी उछलने लगा, नाचने लगी, और पूरा ससर से अंग पुलक अश्रु कंप सब कंपमान होने लगा। सब देख करके आश्चर्य, हरि इसी छोटा 4 साल के लड़की एक सेकंड में आज्ञा की तो तुरंत उनके पूरे शरीर में अश्रु पुलक कंपन बिल्कुल हा कृष्ण करके रो रहा है तुरंत। तो अब प्रत्यक्ष देखकर विश्वास तो करना ही था सब। बोले देखो एक ऐसे उदाहरण दे, तो मैं करके दे, क्यों डर रहे हैं आपने? कोई डरने की बात नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकते, जब मैं तेरा सहाय हूं फिर क्या कर सकता। तो इसे प्रथम बार घूमते घूमते दौड़ते हुए जबरदस्ती घुस करके उनके घर में कबाट तोड़ करके घुसे, घुसा करके 4 साल की उम्र में ये जो छोटी बालिका थी उनको जबरदस्ती कृष्ण प्रेम दिला दिए। बताओ 4 साल की उम्र में माला पकड़कर हरिनाम कीर्तन करता है कोई, भजन करता है? उसको बोलो बेटा बेटी प्रणाम कर लो, इतना ही कर लेगी, पुतली तुतली बोली में हरे कृष्ण बोल लेगी। लेकिन अगर भगवान कृपा करते हैं, कोई उम्र कोई ज्ञान कोई स्थिति कोई परिस्थिति काल पात्र कुछ नहीं देखते हैं। बताओ ऐसा कभी होता है? गंगा किनारे टहलते टहलते दौड़ करके गए, कबाड़ तोड़ करके जबरदस्ती घुस करके अल्टर में बैठ करके सबको कृपा तो किए, तो उनको न चाहते कोई सोच भी नहीं था। ये 4 साल के छोटी बालिका को साक्षात कृष्ण प्रेम से सिक्त कर दिए, एक मिनट में नहीं लगा, एक सेकंड में सरोवर हो गया, पूरा लबालब कृष्ण प्रेम से भर गई, सभी देख रहे हैं। अहो भाग्य है, भगवान ऐसा करा सकते हैं, अगर वो चाहें तो करा सकते हैं, करके देखा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो नाम दशा नाम हो न सुत, ये हम निज बल चेष्टा प्रति भरसा छड़िया तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिए, बस अपना भरोसा कुछ नहीं कि हम कर लेंगे। वो अगर चाहें जबरदस्ती आकर के दिला देंगे, आप चाहे फिट हो, क्वालिफाई हो, डिस्क्वालिफाई, कोई देखेंगे नहीं पात्र अपात्र, दे देंगे, उनको देने में कोई हर्ज नहीं, मालिक है, कोई पूछ नहीं दे सकता। भगवान को क्यों करके नहीं कोई पूछ सकते हैं, उनका सामने प्रश्न ही नहीं उठता, कोई क्यों नहीं बोल सकते, उनकी मर्जी, भगवान मालिक, दिला दिए उसको। और 4 साल की उम्र की लड़की उनको साक्षात कृष्ण प्रेम दिला दिए, और फिर उसके बाद में खूब नाचे, महाप्रज्ञा शिला में गाए, सब भोग राग स्तुति कीर्तन हुआ, सब आसपास में जितने भक्त लोग सब इकट्ठा हो गए, खूब उनके स्तुति भोग राग रंधन होने लगा। और जब भोजन लीला हुआ, भोजन खा करके महाप्रभु माला पहन कर तांबूल चरमण करके नाच रहे हैं, सबको नचा रहे हैं, तो नारायण को बुलाए, बुलाए और पान चुबाते चुबाते उनको दे दिए, बोले लो दे दिए, गर्भधान संस्कार कर दिए, और जो भोजन किए बोले मेरा जो रिमिनेंट से सारे उनको दो, वो लड़की को दे दो। इसलिए सारे वैष्णव मंडली में ये प्रसिद्ध है, गौरांगर अवशेष पात्र नारायणी, गौरांग महाप्रभु के झूठन पात्र, पिकदानी, पिकदानी समझते ना, आजकल आप लोग तो पान नहीं खाते हैं, जो गांव देखे बड़े लोग पान खाते ना, पान खाकर थूक फेंकने के लिए एक पात्र होता है, इसमें थे इधर उधर नहीं फेंकते हैं। आजकल तो यूपी में जहां ऑफिस ऑफिस देखो सब दीवार फीवार गंदा करते हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, एक पात्र रखते हैं, उसमें पिक थूक डालते हैं, तो उसको पिकदानी कहते हैं। बोले महाप्रभु के पिकदानी है नारायणी, उनके अधिकार दिए, जो भी महाप्रभु का अवशेष वो लेगा, तो ही हो गया उनका। अब इसी के कारण कहते हैं कि इसी के कारण उनके गर्भ में वेद व्यास जी आ गए, और आए तो अभी माता के महिमा गाए, नारायणी पुत्र बन करके आए। अब आगे चल करके महाप्रभु सन्यास लिए, जब सन्यास लेकर के नवदीप छोड़ करके चले गए और नीलाचल में रहने लगे, तब श्रीवास श्री राम श्रीपति सिनिधि वो बोले कि नहीं, इस नवदीप में प्रतिदिन महाप्रभु आकर के मेरे घर में कीर्तन विलास करते थे, इतने उनका साथ ये जगह पर, तो उनको कहीं जगह देखते तो रोते थे, महाप्रभु के पीछे सहन नहीं होता था, हर पेड़ पौधा घाट बाट सभी में स्मरण आता था कि गौरांग के साथ इस प्रकार मेरा लीला विलास होता था, तो इस दुख को सहन नहीं किया, बोले नवदीप छोड़कर चल दी, बोले ना यहां रह करके मैं जी नहीं सकता। जब निमाई चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा, इस नवदीप से नहीं रहूंगा, तो उन्होंने नवदीप त्याग करके कुमारहट चले गए, गंगा किनारे कुमारहट में वहां जाकर वास करने लगे। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी जब महाप्रभु संन्यास लिए, तो वहां रह करके यहां एक ब्राह्मण थे जो उनका नाम था वैकुंठ, वैकुंठ मिश्र, तो उनके साथ नारायण का विवाह हुआ। ऐसे कहते हैं कि जब नारायणी गर्भवती थी तभी वैकुंठ मिश्र का परलोक गमन हुआ, वो चल बैठे, मतलब उन्होंने पिता को तो देखे ही नहीं, वृंदावन दास ठाकुर पितृमुख दर्शन ही नहीं किए, पिता के मुख दर्शन ही नहीं कर पाए, वो तो गए। और बाद में वो जो परिवार सतगुरु नहीं हुआ, तो इस प्रकार अवस्था में तो श्रीवास पंडित ने अपने भांजी को नारायणी को ले आए अपने घर में, अपने घर में लाकर रखने लगे, बोले वो अकेली क्या रहेगी, गर्भवती कोई नहीं, उनका पति नहीं, इस अवस्था में विधवा है, तो लाकर घर में रखने लगे। और बाद में अब वो तो अपने धुन में रहते थे, तो बाद में इसे कहा गया है कि कि शिवास पंडित के पत्नी जो मालिनी देवी, उनके ससुराल था, उन ससुराल नहीं, उनके उनका अपना घर था मामगाछी। अभी भी वर्धमान जिला का पूर्व साइड में पूर्व स्थली करके एक थाना है, जिसमें एक छोटा सा पल्ली है जिसका नाम है मामगाछी। आप जो लोग सब नवद्वीप मंडल परिक्रमा गए होंगे वो अवश्य यहां गए होंगे। नवद्वीप नवद्वीप के अंदर एक द्वीप है मोदद्रिम द्वीप, उसको वही मामगाछी की मोदद्रिम द्वीप कहते हैं। वही मामगाछी वहां पे अभी भी अद्यावधि श्री वृंदावन दास ठाकुर के सेवित गौर निताय विग्रह विद्यमान है, सेवा पूजा उनका हो रहा है, जिसको वृंदावन दास ठाकुर सेवा किए थे। ऐसे कहते हैं कि जब शिवास पंडित भी चल बैठे हो तो सब जो पंचतत्व थे सब अंतर्धान हो गए, सब आए थे ऐसे गए भी ऐसे, उनका कोई है तो चले गए। तो नारायणी देवी अकेली हो गई, तो पहले से विधवा थी और छोटा सा लड़का था, वृंदावन दास ठाकुर बिल्कुल शिशु अवस्था में थे, तो क्या करेंगे। तो मालिनी देवी अपने मायके अपने घर में गए थे, तो उन वो भी नारायण को ले गए थे साथ में, तो बहुत वृद्ध हो चुके थे बुद्धा। तो उन्होंने अपने परिवार पोषण के लिए अपने रोजी रोटी जुगाड़ करने के लिए नारायणी देवी को दूसरे के घर में काम करना पड़ा। जो जितने गौरांग महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त थे उन लोग जानते हैं, उन लोगों के बीच में नारायणी को प्रभु के जो विशेष कृपा है सब जानते हैं। तो बोले नारायणी है और उनके पुत्र है तो उनको कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो इसलिए मामगाछी में गौरांग महाप्रभु के एक श्रेष्ठ पार्षद थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त, उन्होंने नारायणी और उनके पुत्र का भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर ले लिए, उनके घर में लेकर रखे और उनको पूरा मेंटेन करने लगे। तो छोटे बालक अवस्था से, शिशु अवस्था से वृंदावन दास ठाकुर मामगाछी में वासुदेव दत्त ठाकुर के घर में रहे, वहीं शास्त्र अध्ययन आदि किए, उनके अध्यक्षता में सब पढ़ने लगे व्याकरण आदि, बहुत बड़े पंडित बने। अभी भी मोदद्रिम द्वीप में आप जाएंगे एक आंगन है जिसको बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के बाल्यावस्था का विचरण भूमि, वहीं खिलाबुला करते थे, वहीं सेवा पूजा करते थे गौर निकाय के। तो मामगाछी में रहे युवक अवस्था तक, उन्होंने महाप्रभु को देखे नहीं, लेकिन महाप्रभु तभी थे निराचल में थे जब वृंदावन दास ठाकुर थे, वो भी थे लेकिन महाप्रभु के उनका दर्शन नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु के दर नित्यानंद प्रभु का शिष्य तो थे, नित्यानंद प्रभु के सिद्धाश्रय कृपा पात्र थे वृंदावन दास ठाकुर, उनके ही शिष्य थे। तो बाद में ऐसे कहते हैं कि वहीं मामगाछी में रह करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु के आदेश से उन्होंने इस भागवत को रचना किए, चैतन्य लीला को रचना किए। यद्यपि चैतन्य चंद्रामृतम और जो मुरारी गुप्ता के कड़चा और वो सब लिखा गया था, लेकिन एक विस्तृत वर्णन के रूप में और लोक भाषा में जिसको साधारण आम आदमी समझे, इसी प्रकार भगवान का चरित्र अभी तक नहीं था, लिपिबद्ध नहीं था। प्रथम नित्यानंद प्रभु का आदेश को, अनुग्रह को प्राप्त करके श्री वृंदावन दास ठाकुर ने मामगाछी में उसको लिखना शुरू किए। तो इसका नाम रखे थे चैतन्य मंगल, और इतने विस्तार करके लिखने लगे महाप्रभु के बाल्य लीला नवद्वीप लीला का इतने विस्तार वर्णन करके लिखने लगे। अब बाद में फिर याद आया अपने गुरु नित्यानंद प्रभु के आवेश में आ गया, उनके वर्णन करने लगे, तो ग्रंथ इतना विस्तार हो गया कि अंत लीला और लिखे ही नहीं, छोड़ दी, बहुत बड़ा हो गया ग्रंथ। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का नवद्वीप लीला प्रथम भाग जो महाप्रभु का जीवनी है, उसको जो उन्होंने जिस प्रकार लिखे वर्णन किए कि जितने गौर भक्त वृंद है सभी बोलते हैं कि ये तो किसी मनुष्य का लिखा हो नहीं सकता, वृंदावन दासे मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास ठाकुर तो केवल बोलते थे लेकिन असली वक्ता कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। आपने बात आप खुद लिखवा रहे थे, वो तो केवल निमित्त मात्र थे, है ना। जब कोई वीणा यंत्र देखे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास वीणा है, वायोलिन है, जो भी यंत्र को खरीद के लाए कस ली, तो उसको अपने आप थोड़ी बच सकता, कोई बजाने वाले हो वही उसमें सुर निकाल सकता है। अच्छा अच्छा, केवल यंत्र से नहीं होगा, यंत्र चलाने वाले व्यक्ति चाहिए। ठीक इसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर तो कुल यंत्रवत थे लेकिन वीणाधारी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने उनके द्वारा अपने रचित अपने चरित रचना करवाए और उसको जो पढ़े, तभी जो गौर भक्त वृंद से वृंदावन में रहते थे गोस्वामी वृंद, वो जब उसको पढ़े, उनका पास जब कपी आया, इस ग्रंथ आया, तभी तक लोचनदास ठाकुर की रचना हो चुका था और कविराज गोस्वामी का भी चरितामृत भी रचना के बोल दिए थे। ये सबको मिला करके देखे, बोले कि ये जो वृंदावन ठाकुर का रचित ये तो साक्षात अभिन्न भागवत है, ये अभिन्न गौर चरित है, असली गौरांग महाप्रभु का चरित्र वही है ना। बाकी जो बाद की लीला है उसमें तो कोई इतना खास रस नहीं, क्योंकि संन्यास ही निरस हो गए, संन्यास लेना। इसलिए हम अल्टर में कभी देखेंगे गौरांग महाप्रभु जो पूजा करते हैं, महाप्रभु का संन्यास रूप को कभी करते पूजा नहीं, बिल्कुल केस के साथ तिलक के साथ आपने जो जो गौर विग्रह है वो नवदीप लीला के विग्रह को पूजा करते हैं, क्योंकि संन्यास लेने के बाद तो फिर नहीं करते उनको। मंडित मस्तक को नहीं देखकर सुरोते हैं, देख करके बोले ये क्या कर दिया, इतने सुंदर रूप था। तो जो नवदीप में महाप्रभु का जो लीला के वर्णन इतने सुंदर भाव से, और जब श्री वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु का लीला वर्णन करते हैं तो चैतन्य भागवत में बार बार महाप्रभु को ऐश्वर्य के अधिकारी वैकुंठ रे पति वैकुंठ राय करके वर्णन करते हैं। यद्यपि जानते हैं वो अभिन्न राधा कृष्ण है, गोलकाधिपति है, किंतु उनके रचना में प्राय आपको मिलेगा कि ऐश्वर्य के वर्णन, ये वैकुंठ अधिपति है। क्योंकि तभी पूरे लोक में विशेष करके नवदीप आदि में भगवान को तो मानते ही नहीं थे, तो चमत्कार को नमस्कार कोई विशेष ऐश्वर्य देखने से लोग मानेंगे, तो इसलिए उनको वैकुंठ कति की प्रति करके वर्णना किए तो लोग उसको माने, अच्छा यही नारायण है, वही ईश्वर है, तो इसे वर्णन किए हैं। लेकिन जो भागवत का भक्ति के जो सिद्धांत है, जो भगवान के नाम के महिमा है, भगवान की भजन का महिमा है, उसको ऐसे सरल सहज सावलील ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किए। श्रीमद् भागवत महापुराण तो विशाल ग्रंथ है, उसको साधारण जन समुदाय पढ़ करके हजम नहीं कर पाएगा, कठिन बात है। लेकिन चैतन्य भागवत इतने सरल सुंदर है, उसको कोई पढ़े अगर समझ ही नहीं आए, आप बंगाली जानते नहीं है, लेकिन अगर कोई चैतन्य भागवत को वंग भाषा में पढ़कर आपको सुनाए, मैं तो ये चैलेंज देकर कहूंगा, आप बंगाली भाषा बिल्कुल भी नहीं जानते लेकिन आप बैठ करके सुने, सुनते ही दो घंटा के अंदर अगर आपका आंसू आंख में आंसू नहीं आ जाएगा, नहीं भाषा ना समझे हुए भी उसके अंदर इतने भक्ति के प्रेम के प्रीत के पुट रख दिए उन्होंने, इतने कुछ माल मसला डाले हैं कि हमारा जैसे कठोर स्टील जैसा हृदय को भी वो पिघला देता है, इतने प्रेम डाल के रखे, हर प्यार में प्रेम के पुट भर रखे हैं। तो इसी को देख करके सारे गोस्वामीगण निर्णय किए कि ये जो है ये भागवत है, उसका नाम चैतन्य मंगल से परिवर्तन के चैतन्य भागवत रखे, और लोचनदास ठाकुर के जो ग्रंथ था उसके नाम चैतन्य मंगल रखे, और जो कविराज गोस्वामी ने लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको चरितामृत नाम रखे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं आपने रचना श्री चैतन्य चरितामृत में भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं चैतन्य भागवत की, वृंदावन दास ठाकुर की। मैं तो चाहूंगा उसको पढ़कर कब सुना देने के लिए, भले आप समझे ना समझे। वो कहते हैं कि अरे मूढ़ लोको सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी वे सकल। वो लिखते लिखते चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करते हुए कबीराज गोस्वामी हटा तो उनका आवेश में आकर बोलते हैं, अरे मैं क्या लिखता हूं, अगर चैतन्य की महिमा आप जानना चाहते हो तो पढ़ो वृंदावन दास ठाकुर के रचित ग्रंथ। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैलासी चैतन्य मंगल, जहरा श्रवण नाशे सर्व अमंगल। समझ में आता है ना। चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का महिमा अगर जानना चाहते हो तो चैतन्य भागवत पढ़ो। जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा, केवल गौर निताय का महिमा नहीं, कृष्ण भक्ति सिद्धांत के सीमा तक वर्णन उसमें है। भागवते जत भक्ति सिद्धांत रसार, लिखी आछे न यहां जानी करिया उद्धार। वृंदावन दास ठाकुर भागवत को घोर करके पीस करके ग्राइंडिंग करके पानी करके अर्क जो एसेंस निकालते ना वो निकाल करके इसमें धर दिए हैं। इसको लिए बोलते हैं कि भागवते जत भक्ति सिद्धांत तेरा सार, भागवत में भक्ति है, भक्ति के सिद्धांत का जो सार चीज है उसको उन्होंने लिखी आचने यहां जानी करिया उद्धार, उसको जान करके समझ करके उसी को लिख दिया। चैतन्य मंगल सुने जदि पाषंडी जवन, दूसरे के बाद छोड़ो ये कबीराज गोस्वामी का अपनी भाषा है, बोलते हैं इसी चैतन्य भागवत को अगर कोई पाषंड मूर्ख जवन भी, जवन समझना किसी को बोलते हैं मोहम्मदियन, जवन भी जिसका कोई जाति में गिनती भी नहीं है, जवन भी पाषंड भी अगर सुनता है सही महावैष्णव है ततक्षण, वो सुनने के बाद तुरंत ही महावैष्णव हो जाएगा। और उनको तो बंगाली समझ में नहीं आता है, पाषंड या जवन है, लेकिन वो जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप लोग किनसे नहीं होंगे। लेकिन आप लोग दुर्भाग्य, हम पढ़ते नहीं, और नहीं पढ़ते कि हम सुन लेंगे तभी भी कल्याण हो जाएगा। मनुष्य रचित नारे ए ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्तासी चैतन्य। बोले कोई मनुष्य उसको रचना नहीं कर सकता है, ये तो निश्चित बात है। वृंदावन दास के तो केवल निमित्त है, वक्ता कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, कविराज गोस्वामी कहते हैं। अब ओ कोटि नमस्कार करेंगे तो हम कितना नमस्कार करना चाहिए, हिसाब लगा दीजिए हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी त्यो तारीला संसार। संसार को उद्धार किए नारायणी चैतन्य रा उचिष्ट भाजन, तारा गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। नारायण की महिमा वर्णन करते हैं, नारायणी चैतन्य रा उचिष्ट भाजन, बोलना गर्भधान संस्कार कर दिए उचिष्ट खिला करके। और क्या, और शादी नहीं हुआ था अभी, हम लोग गर्भधान संस्कार करते हैं शादी होने के बाद में करते हैं, वो तो चार साल की उम्र में कर डाले आप भाई, कोई पता नहीं हो गया पहले से धर दिए। नारायणी चैतन्य रा उचिष्ट भाजन, तारा गर्भे जन्मिल सिदास वृंदावन। आपने भक्त आने के लिए पहले से शुद्धि करके चार साल की उम्र रख दी, बोले जा वहां वेद व्यास जी आएंगे अभी। तारा की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहारा श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। यह अद्भुत चैतन्य चरित चैतन्य भागवत वर्णन है, उसको अगर तीन लोक में कोई भी पशु पक्षी उसको सुने तो भी शुद्ध हो जाएंगे। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिवे संसार दुख पावे प्रेमानंद। इसलिए चैतन्य नित्यानंद का भजन करो, ये संसार भव सागर से उतर करके प्रेमानंद को प्राप्त करेंगे, है ना। नहीं तो इसी प्रकार श्री चैतन्य भागवत को रचना करने का जो शक्ति, जो आवश्यक वस्तु और जो जो आवश्यकता है सब कुछ बुद्धि वृत्ति इत्यादि सब डाल करके वो जब उनके मां के उम्र 4 साल की उम्र थी तभी से चैतन्य महाप्रभु वहां व्यवस्था करके रख दे। बोले अब आप पान के हमारे उचिष्ट खा लो, अब आगे चल करके अब शादी होगा, बाद में आपका लड़का होगा, अब ये वेदव्यास बनेगा, अब समय करके छोड़। अब बताओ जब भगवान कृपा करना चाहेंगे तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं एडवांस बुकिंग। अब कभी वृंदावन ठाकुर पैदा हुए लेकिन वो कर दिए, और उनको दर्शन करने का क्या जरूरी, पहले कृपा दे चुके हो इनडायरेक्टली। अब आपने उचिष्ट के भाजन बनाए किसको, नारायणी को, कब, जब उनका उम्र 4 साल की थी, उनका बेनिफिट कौन लिया, नारायणी लिया, बेनिफिट लिए कौन, अब गर्भ में तो शादी नहीं हुआ था, कब आएंगे, कब बाद में, वो बेनिफिट सारे वो लिए, उनके लिए एडवांस बुकिंग करके रख गए। अब भगवत कृपा को क्या कहें उनके महिमा, ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको कृत संकल्प होकर के, कृत निश्चय होकर के प्रयास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। नहीं तो यतंतो अपि अकृतात्मानं नयनं पश्यन्ति अचेतसः, जतना करने पर भी जो अकृतात्मन है वो उनको देख नहीं सकता, पा नहीं सकता। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतंतो अपि अकृतात्मानं नयनं पश्यन्ति अचेतसः, उनका चेत नहीं होगा। इसलिए कृतनिश्चय होकर के, कृत संकल्प होकर के अगर भगवान के लिए साधन भजन में बिल्कुल लगे पड़े, करते करते हृदय शुद्धि हो जाए, तब जाकर कहीं भगवान की कृपा का आस्वादन कर पाए, नहीं तो नहीं होगा। अब तक जो हमारे जो तथाकथित साधन भजन कर रहे हैं उसका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, अभी क्या है, भगवान कहते हैं कि ये संसार में हम जो आए हैं ना बद्ध जीव, बोलते किस लिए आए हैं, आप बोलते हैं आपने कर्म के अनुसार आए, भगवान बोलते हैं कर्म क्या, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत समहं सर्वभूतानि सर्ग जानती परंतप, ये सर्ग में जन्म चक्र में आते हैं दो ही कारण है, ये द्वंद है, क्या द्वंद है ना, इच्छा और द्वेष, इनको चाहते हैं इसको नहीं चाहते हैं, यही है द्वंद, यही द्वंद में मोहित होकर के संसार में बार बार चक्र में आना पड़ता है। अब इस द्वंद से निकले कैसे, तुरंत दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवद गीता 7वां अध्याय के 27 नंबर श्लोक में बात कहे, तुरंत 28 नंबर श्लोक में भगवान ही उत्तर देते हैं, जेसान तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, लेकिन जिसका पाप के खाता बैलेंस नील हो गया, खाता में कुछ बैलेंस नील हो, खत्म हो गया, सारे विड्रॉ कर लिए, जेसाम तु अंतगतम पापम, पाप का खाता नील हो गया, रह क्या गया, न पुण्य का बैलेंस रह गया, जनाना पुण्य कर्मणा, ते द्वंद मोह निर्मुक्त, ते द्वंद, द्वंद क्या है, जो इच्छा देश के द्वंद है वो द्वंद मोह से निर्मुक्त मुक्त हो जाएंगे विशेष रूप से, और दृढ़ भाव से मेरा भजन करें, भजते माम दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत होकर मेरा भजन करता है। जब तक ये पाप के वासना, मान पाप थोड़ा बहुत बचे रहेगा कलमस, तब तो सवाल ही नहीं उठता। तब अभी हमारा जो तथाकथित छोटे मोटे प्रयास हम करते हैं नालायक के बराबर नहीं के बराबर, तो उसको भी लक्ष्य करना चाहिए। हम कभी धोखे में इधर उधर करके आते हैं, हम प्रेम चाहते हैं कृष्ण पे, हरे को प्रेम, तुम कौन है प्रेम के अधिकारी किसे बन गया है? सारे कचड़ा डालकर बैठे हो, प्रेम के साथ नहीं, अभी पात्रता ही नहीं हमारा पास। उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए, वो पाप को अंत करने के लिए, शुद्धिकरण के लक्ष्य लेकर के साधन भजन करना चाहिए। जब हमारा हृदय द्वंद से मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई संशय है, कोई कमेंट? श्री वृंदावन दास ठाकुर की। समेत गौर भक्त वृंद की जय।